Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Girinibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत्पुरं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 ॐ ॐ ॐ कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत छठे अध्याय में तीसरे मंत्र की व्याख्या है। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयास् तत्त्वस्य तत्त्वेन समित्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिविरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयद् यः तेषामभावे कृतकर्मणा सह कर्मक्षये याति स तत्त्वत्वन्यः आदिससंयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालः कल अकलोऽपि दृष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमेद्यम् देवं स्वचित्तस्थम् उपास्य पूर्वम्। छठाध्याय तत् और तुम पद की प्राप्ति के लिए साधन का निरूपण करते हैं। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः, इस मंत्र की दो प्रकार की व्याख्या हुई है। एक तो वह तत्पद का जो वाच्यार्थ जिसका प्रसंग तटस्थ लक्षण के रूप में निरूपण कर रहे थे, उस परमात्मा के लिए कह रहे हैं। वह परमात्मा समस्त कर्मों को करके वह स्वयं निवृत्त हो गया। कर्म करना यह स्वाभाविक ही है, विशेष करके मनुष्यों के लिए, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति और फल के प्रति आसक्ति ये उसका एक दुर्गुण है। परमात्मा में और जीवात्मा में यही अंतर है कि परमात्मा कर्म करता है, फलाशक्ति और कर्माशक्ति को छोड़कर फल और कर्म से वह निवृत्त हो जाता है, वो केवल करता है, भोक्ता नहीं है। परमात्मा भोक्तृभाव से निवृत्त हो जाता है, अपने कर्मों का हिसाब किताब परमात्मा नहीं रखता। जीवात्मा में यही अंतर है कि वह कर्म करता है तो उसमें भोक्ता भाव के चलते अपने कर्मों का हिसाब किताब रखता रहता है। तो जीवात्मा को भी जीव भाव से मुक्त होना होगा तो परमात्मा जैसा कर्म करता है वैसे ही करना करना पड़ेगा। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समित्य योगम। वो अपने आप को निवृत्त हो जाता है और वह महत्त्व से लेकर भूत तत्व पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उसकी सृष्टि उसको एक दूसरे से विनियोग कर देता है यानी जोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि संसार के कोई भी पदार्थ स्वतंत्र नहीं है। पूर्व पूर्व पदार्थों से उत्तर उत्तर पदार्थ बंधे हुए हैं। इसको दूसरी भाषा में यूं समझना हो तो हर कार्य अपने कारण से बंधे हुए हैं। एकेन द्वाभ्यम त्रिविरष्ट वीरवा। वह एक पदार्थ से फिर दूसरे पदार्थ से तीसरे पदार्थ इस तरह तमाम अष्टभिः अष्टदा प्रकृति को एक आपस में बांध देता है। अष्टदा प्रकृति की बात आप लोगों ने गीता में सुनी है। भूमि राप नलो वायु खम्मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। कालेन चैवात्म गुणश्च सूक्ष्म ही ये जितने भी तत्व हैं एक तत्व दो तत्व तीन तत्व चार तत्व इस समय समय में प्रभाव समय के प्रभाव से वह अपने में विद्यमान तमाम सूक्ष्म भावों को व्यक्त करते रहते हैं। देखो किसी भी उपनिषद के किसी भी मंत्र को प्रसंगगत उसकी व्याख्या करनी चाहिए संदर्भ अनुसार प्रसंग के अनुसार उसकी व्याख्या होती है। व्याख्याता उन प्रसंगों को किस रूप में देखता है उसी अनुकूल वो व्याख्या करता है। लेकिन इस सब व्याख्या का प्रयोजन एक ही होता है। ऐसा नहीं कि प्रयोजन कोई भिन्न हो तो व्याख्या कोई भिन्न कर रहा हो। भिन्न प्रयोजन के लिए भिन्न व्याख्या नहीं करता है। एक ही पद की व्याख्या धातु अर्थ को लेकर प्रासंगिक अर्थ को लेकर उसकी भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। विद्वान लोग ऐसे प्रयोग करते हैं लेकिन उन सब का प्रयोजन एक ही रहता है कि उसके द्वारा वह किस प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं। प्रयोजन में कोई अंतर नहीं पड़ता। व्याख्या में अंतर पड़ जाए प्रयोजन में अंतर नहीं पड़ेगा। इस मंत्र की व्याख्या श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने बड़े सुंदर ढंग से साधना परक कर दी है। साधक साधना किस तरह करे तब उसको साध्य की प्राप्ति होगी। तो इस मंत्र को साधना मंत्र साधन मंत्र और साधना मंत्र कहते हैं। तत्कर्म कृत्वा का अर्थ कर दिया है तस्मै कर्म कृत्वा तत्कर्म कृत्वा। तुम जो भी कर्म करते हो उस कर्म को किसके लिए कर रहे हो तुम्हारी दृष्टि क्या है। तुम उन कर्मों से मुक्त हो सकते हो कि कर्मों में ही बंध जाओगे इस पर निर्णय इस बात पर करता है कि तुम किसके लिए कर्म कर रहे हो। औरों के लिए कर्म कर रहे हो कि स्वयं के लिए कर रहे हो। लोग कह देते हैं महाराज हम अपने लिए तो एक चीज की कोई आवश्यकता नहीं है तो दूसरों के लिए कर देते हैं। अब उससे यदि पूछा जाए कि वो दूसरा कौन है वो कहेगा कि दूसरा वही बच्चा है दूसरा वो पति है दूसरा वो पत्नी है दूसरा कौन है? तो बोले दूसरा वो गांव के लोग हैं, दूसरा वो शहर के लोग हैं, दूसरे वो राज्य के लोग हैं, दूसरे वो राष्ट्र के लोग हैं, दूसरे वो विश्व के लोग हैं। और के लिए करते महाराज, हम अपने लिए नहीं करते। लेकिन इस तरह के जो दूसरे लोग हैं उनके लिए जो तुम कर्म करते हो, ये वास्तव में अपने लिए ही कर्म किए सराही है, क्योंकि वो भी जीव है, तुम भी जीव हो, और जीव जीव के लिए कर्म कर रहा है। तो भले तुम अपने लिए करो चाहे अपनी पत्नी के लिए करो, भले तुम अपने लिए करो चाहे अपने भाई के लिए करो, भले तुम अपने लिए करो चाहे अपने गांव वालों के लिए करो, भले तुम अपने लिए करो चाहे अपने राष्ट्र वालों के लिए करो, राष्ट्रवासियों के लिए करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वास्तव में कर्म तत् के लिए करना चाहिए। अब आप लोगों ने बहुत बार वेदांत तो सुनी है, तत्पद का अर्थ क्या है भाई? तत्पद का अर्थ दूसरे लोग नहीं है। कहीं भी उपनिषद ने तत्पद का अर्थ गांव वालों को नहीं कहा है, तत्पद का अर्थ राष्ट्रवासियों के लिए नहीं कहा है, तत्पद का अर्थ समाज के लिए नहीं कहा है। किसी भी उपनिषद में तत्पद का अर्थ समाज ऐसा अर्थ किया है? तत्पद का अर्थ गांववासी ऐसा किया है? राष्ट्रवासी ऐसा कहा है? तत्पद का अर्थ विश्व के प्राणी ऐसा कहा है? तो फिर तत्पद का अर्थ अपने तरफ से क्यों पति लगा रहे हो, क्यों पत्नी लगा रहे हो, क्यों गांव वाले लगा रहे हो, क्यों गांव नगर वाले समाज के लोग को लगा रहे हो, क्यों विश्व के अर्थ कर रहे हो? शास्त्र जो अर्थ कर रहा है वही अर्थ क्यों ग्रहण नहीं करते हो? तत्कर्म कृता, तत् का अर्थ होता है शास्त्र ने ईश्वर के लिए कहा है, परमात्मा के लिए तत्पद का प्रयोग किया। जहां भी तत् और तद भिन्न अतत, तो ये जिन जिन के लिए तुम कर्म कर रहे हो तो सब अतत हैं, तत्व है ही नहीं, तत्व परमात्मा है। यदि इन सब में परमात्मा बुद्धि है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बुद्धि तुम्हारी हो चुकी नहीं है। तो तत्कर्म तत्पद माने परमात्मा के लिए कर्म करो। कर्म के बारे में ये विचार करो कि ये कर्म किस प्रयोजन से कर रहा हूं। परमात्मा के लिए यदि वह कर्म करता है तो वह कर्म के द्वारा वह बंधाएमान नहीं होता। सुबह सुबह फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंध नहीं। यत करोसी यदस्नासी यज्जुओसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम सुबह सुबह फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंध नहीं। गीता के साथ, इन श्लोकों के साथ इसका संबंध है। जैसे गीता, वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मदर्पणम, तुम जो कुछ भी कर्म करो तो वो कर्मों को तुम मुझे अर्पण करो। तो कृष्ण जिसके लिए मुझे कह रहे हैं वही यहां श्रुति तत्, उसी के लिए यहां श्रुति तत् कह रहे हैं। तो उसके लिए जो गीता में मुझे अर्पण करो कह रहा है उसके लिए तुम कर्म करो, औरों के लिए नहीं। तत्कर्म कृत्वा, कर्म का फल क्या हुआ? उसको अर्पण करने का फल यह हुआ कि उस कर्म में होने वाले प्राकृत स्वाभाविक या किसी निमित्त से होने वाले शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों प्रकार के कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। यही साधक की साधना है। साधक को इसी साधना से, अपनी इसी क्रिया से, इन्हीं कर्मों के द्वारा अपनी साधना का आरंभ करना चाहिए। तत्कर्म कृत्वा, लेकिन एक बात और ख्याल रखना, कब तक करना है उसके लिए कर्म? बोले जब तक चित्त शुद्ध न हो तब तक उसके लिए कर्म करो। तुम्हारे कर्म का प्रयोजन होना चाहिए चित्त शुद्धि, न कि तुम्हारे कर्मों के द्वारा और चित्त में विकार उत्पन्न हो जावे। और वो चित्त शुद्धि होगा तब कि उस कर्म को तुम ईश्वर को अर्पण करोगे, तब जाकर तुम्हारा चित्त शुद्धि होगी, तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः, पहले कर्म करो फिर बाद में कर्म छोड़ो, फिर कर्म करो फिर कर्म के फल को छोड़ो। तो बहुत लोग ये कहने लग जाते हैं जब कर्म ही छोड़नी है और कर्म फल ही छोड़ना है तब फिर उस कर्म में फंसने ही क्यों, वो कर्म को करना ही क्यों। इसके लिए नीतिकार कहते हैं प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वर, किसी कीचड़ में पांव रखकर फिर बाद में तुरंत धोना पड़ता है तो फिर पांव रखना ही क्यों, पहले कीचड़ में पांव डालो फिर बाहर निकल के फिर धो, जब धोना ही है तुरंत ही धोना है फिर उस कीचड़ में पांव क्यों रखने जाए। तो समझदारी तो यही है कि पहले ही कीचड़ में पांव रखो ही नहीं। समाज में ऐसे उत्तर देने वाले बहुत मिलते हैं, कर्म सब छोड़ दो, कर्म का फल त्याग दो, कर्म भी परित्याग कर दो, ईश्वर के लिए अर्पण कर दो। जब ये कहते हैं कि जब उस कर्म का हमसे कोई संबंध ही नहीं है तो फिर उस कर्म में हाथ क्यों डालेंगे। लेकिन एक बात ख्याल रखना, इस तरह कर्म छोड़ने वालों को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा नैष्कर्म सिद्धिम परो पुरुषो अश्नुते, इस तरह कर्म छोड़ने वाला व्यक्ति नैष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकता है। नैष्कर्म भाव की प्राप्ति कर्म न करके प्राप्ति नहीं होती है, कर्म करके कर्म त्यागोगे तब जाकर नैष्कर्म भाव की प्राप्ति होगी। देखो स्वच्छता के लिए भी गंदगी करना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग व्यवहार में करते हैं, किसी किसी की बड़ी आदत है ये होती है, बहुत अच्छा है कि भोजन करने बैठते हैं थाल को इस तरह साफ और इस तरह चाटते हैं हाथ से कि मान लो कि उसको अब मांजने की जरूरत ही नहीं है। बड़े साफ थाल कटोरी को इतनी सफाई से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं इतनी गंदगी करते हैं उस थाल को, और कुछ लोग बड़ी सफाई से खाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब इसको मांजने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने उस थाल में खाई है तो जूठा हो गया है। अब विचार करो उस थाली की शुद्धिकरण कैसे करोगे, तब यह है कि उसको राख लगा के मांजना पड़ेगा। तो जिस समय तुम राख लगा के मांजते हो तो उसने जो खाकर छोड़ा था उससे भी ज्यादा गंदा हो जाता है, होते हैं कि नहीं बर्तन बोलो। जिस समय आप राख लगाकर उस बर्तन को साफ करने के लिए राख लगा के मांजते हो उस समय वह मांजने से पहले जो गंदे थे उससे भी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। इतनी गंदी नहीं थी मांजने से पहले, बड़े साफ थे, फिर भी तुमने राख लगा के मांजी, मांजना ही पड़ता है। अब जब राख लगा के उसको इस तरह मांजा गंदा किया तो फिर पानी से क्यों धोना, फिर धोना भी पड़ता है अपने हाथ। उसी समय उसको राख लगा के इतने बर्तनों का ऐसा गंदा भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुरंत पानी डालकर उसको धोना भी पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा तब वह बर्तन शुद्ध होगा, इसके बिना वह बर्तन शुद्ध हो सकता है। कल बर्तन मांजी थी, पूजा का बर्तन मांज कर रखा था, और हमारी परंपरा है कि आज पुनः पूजा करने से पहले उन बर्तनों को फिर मांजो। कल मांज कर रखा हुआ बर्तन वैसे ही साफ है, क्या चमक रहे हैं, उसको फिर आज मांजने की क्या जरूरत है। सामान्य व्यक्ति तो कहेगा कि कोई गंदगी लगी ही नहीं है तो उसको मांजे क्या। लेकिन पूजा के नियम से यह है कि रात्रि का व्यतीत होना ही उसके अशुद्धि का कारण बन जाए। तुम्हारे वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें कोई गंदगी नहीं है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से रात्रि का संक्रमण होना ही उसमें अशुद्धि का कारण बन जाता है। तब दूसरे दिन सुबह फिर आप बर्तन में उन पूजा के बर्तनों को मांजने लगोगे, जिस समय मांजने लगते उस समय और ज्यादा गंदे हो जाते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टि से फिर गंदा हो जाएगा। पहले तो धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध थे, अब तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी अशुद्ध हो गया। तब फिर पानी डालकर अच्छी तरह जब धो पखाल लेते हैं तब धार्मिक दृष्टि से भी शुद्ध हो गए बर्तन और वैज्ञानिक दृष्टि से भी शुद्ध हो गए। इसीलिए गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण पहले कर्म की प्राप्ति कराते हैं, फिर दूसरे तुरंत कर्म को छोड़ने की बात करते हैं। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः, यही है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। यही है प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। संसार उसी के लिए आनंदमय बन सकता है जो इस धर्म, दोनों धर्म को, दोनों रहस्य को जानता है, और उसके लिए संसार विषाद बन जाता है जो इस रहस्य को नहीं जानता। गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये जो नहीं जानते हैं ऐसे व्यक्ति अकृति से भले ही मनुष्य हो, धर्मशास्त्र से वह असुर है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जानने वाला ही वह वास्तव में मनुष्य से भी ऊपर के कोटि में जाने योग्य है। मनुष्य उसको कहते हैं कि अपने ही मन से वो बंध जाए। संस्कृत भाषा का यह धातु पाठ है, सिंह बंधन धातु से मनुष्य बनता है और उसमें मन जुड़ जाता है, और मन से जो बंध जाए उसी का नाम मनुष्य। अपने मन से अपने आप बंध जाए, उनको यूं तो बांधने वाला और कोई नहीं है, लेकिन वो अपने मन से बंध जाता है। तब उसको इस प्रकार के प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को जो जानता है वह असुर भाव से मुक्त हो जाता है, तो उसके लिए जगत आनंदमय हो जाता है। कौन से कर्म प्रवृत्ति मूलक हैं, कौन से निवृत्ति मूलक हैं, कब तक प्रवृत्ति करनी चाहिए, कब से निवृत्ति करनी चाहिए। प्रवृत्ति छोड़ना निवृत्ति नहीं है, निवृत्ति करना निवृत्ति है। तो हम लोग प्राय गलती कर जाते हैं कि निवृत्ति कर्तव्य है, इस बात को हम भूल जाते हैं। प्रवृत्ति छोड़ लो निवृत्ति अपने आप हो गया ऐसा मान लेते हैं, इसलिए निवृत्ति नहीं हो पाती है। निवृत्ति कर्म क्या है, तो बोले जैसे आप बैठे हो यहां सत्संग सुन रहे हो, ये कर्म निवृत्ति कर्म है। जैसे आप बैठकर श्रवण निधिध्यासन मन निधिध्यासन करते हो, यही निवृत्ति कर्म है। प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक कर्म निवृत्ति है, काम्य और निषिद्ध कर्म प्रवृत्ति है। कर्म के चार भेद हैं, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य नैमित्तिक कर्म परमात्मा के लिए होते हैं, चित्त शुद्धि का साधन बनता है। काम्य निषिद्ध बंधन के लिए कारण बनते हैं, जीवन को विषादमय बनाता है। इसलिए काम्य निषिद्ध तो करना ही नहीं चाहिए। नित्य और नैमित्तिक कर्म वह भी भगवत प्रसन्नार्थम करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए करो। नित्य नैमित्तिक कर्म भी कहीं अपने अहंकार की वृद्धि के लिए नहीं कर देना। नित्य नैमित्तिक कर्म भी बहुत गलती क्या करते हैं कि है तो नित्य नैमित्तिक कर्म, उसको भी अहंकार की अभिवृद्धि के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं,